एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना सा है, लेकिन फिर भी रहस्यों से भरा हुआ है। समंदर की लहरें।
हाँ, बिल्कुल। किनारे पर खड़े होकर उन्हें देखना कितना सुकून देता है, पर उन लहरों के पीछे तो विज्ञान, शक्ति, इतिहास, एक पूरी दुनिया है।
सही कहा। और उसी दुनिया को समझने के लिए आज हम फ्रेडरिक राइकलिन के काम पर आधारित दो अलग अलग नजरियों पर बात करेंगे।
जी, दोनों ही वेव्स यानी लहरों पर हैं, पर उनका फोकस, उनका अंदाज बहुत अलग है। एक है बिल्कुल इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स वाला नजरिया।
अच्छा, मतलब एकदम तकनीकी, लहरों का गणित, वो कैसे चलती हैं, ये सब।
हाँ बिल्कुल, उनकी भौतिकी, उनका व्यवहार। और दूसरा?
दूसरा नजरिया वो शायद ज्यादा कहानी जैसा है। जैसा आपने कहा, वो शक्ति, वो प्रभाव जो हम महसूस करते हैं। हाँ हाँ, सही पकड़ा आपने, वो ज्यादा बड़ी तस्वीर दिखाता है। मतलब लहरें सिर्फ पानी का ऊपर नीचे होना नहीं है, वो देखता है कि कैसे ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं।
ऊर्जा? अच्छा।
हाँ, और कैसे इन्होंने हमारे ग्रह के भूविज्ञान को, यहाँ तक कि मानव इतिहास को भी शेक दिया है, मतलब आकार दिया है।
तो एक तरह से ये दोनों नजरिए मिलकर लहरों की एक पूरी ज्यादा गहरी समझ बनाते होंगे।
बिल्कुल।
अरे, आज के समय में इतना जरूरी क्यों है? लहरें तो हमेशा से हैं।
देखिए, आज इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। दुनिया की कितनी बड़ी आबादी तटीय इलाकों में रहती है ना?
हाँ, वो तो है।
और फिर जलवायु परिवर्तन, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तूफानों का पैटर्न बदल रहा है, हम लहरों से ऊर्जा बनाने के तरीके भी तो खोज रहे हैं।
सही बात है।
तो इन सब चीजों को समझने के लिए लहरों के विज्ञान और उनके असर दोनों को जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि रैकलिन के इन दो अलग अलग दृष्टिकोणों से खास बातें निकालें।
ठीक है, तो इससे पहले कि हम लहरों की गहराई में उतरें, जरा फ्रेडरिक राइकलिन के बारे में जान लेते हैं। ये हैं कौन?
फ्रेडरिक राइकलिन, वो कोई साधारण अकादमिक नहीं है। वो कैलटेक, मतलब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिस सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एमेरिटस हैं।
ओह, कैलटेक।
जी, यानी दशकों का अनुभव है उन्हें द्रव यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स और तटीय इंजीनियरिंग में, शोध भी और पढ़ाने का भी। और उनका काम सिर्फ किताबी नहीं है, सुनामी के असर को कम करने में, वेव मैकेनिक्स में उनका बड़ा योगदान रहा है।
तो इंजीनियरिंग और विज्ञान में तो गहरी पकड़ है ही, लेकिन क्या कुछ और भी है जो उन्हें खास बनाता है?
हाँ, एक और पहलू है जो उन्हें वाकई अनूठा बनाता है। वो सिर्फ इंजीनियर और वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक भौतिक समुद्र विज्ञानी, मतलब फिजिकल ओशनोग्राफर भी हैं और विज्ञान संचारक भी।
अच्छा।
और सबसे दिलचस्प बात, वो एक अनुभवी सर्फर और नाविक भी हैं।
सर्फर और नाविक? वाह।
हाँ, तो सोचिए, उन्होंने लहरों को सिर्फ लैब या कंप्यूटर पर नहीं देखा, समंदर में महसूस किया है। उनकी असली ताकत उनकी खूबसूरती।
ये तो कमाल का मेल है। एक तरफ वो इंजीनियरिंग वाली सटीकता और दूसरी तरफ समंदर का वो सीधा, बिल्कुल निजी अनुभव। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता?
लगता तो है, पर यही उनकी खासियत है। वो थ्योरी को प्रैक्टिकल अनुभव से जोड़ पाते हैं। इसीलिए जब वो लहरों पर लिखते हैं तो उसमें इंजीनियरिंग की गहराई तो होती ही है, साथ में प्रकृति की उस ताकत के लिए एक समझ, एक सम्मान भी झलकता है।
वो जटिल विज्ञान को कहानी की तरह बना देते होंगे।
हाँ, कुछ वैसा ही।
तो चलिए अब उनके काम के जो मूल विचार हैं उनको समझते हैं। पहला नजरिया वो इंजीनियरिंग वाला, उसका मुख्य सार क्या है?
इंजीनियरिंग वाला दृष्टिकोण लहरों को मूल रूप से भौतिक घटनाएं मानता है। उसका मकसद है लहरों के विज्ञान का इस्तेमाल करके असल दुनिया की समस्याएं हल करना।
जैसे कि?
जैसे ऐसे बंदरगाह बनाना जो सुरक्षित हो, तटों को कटाव से कैसे बचाएं, या समुद्र में जो स्ट्रक्चर बनते हैं, ऑयल रिग, विंड टर्बाइन, वो लहरों के थपेड़े कैसे झेलेंगे। ये सीधे सीधे विज्ञान को इंजीनियरिंग समाधानों से जोड़ता है।
अच्छा, यानी थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का एक पुल जैसा। और दूसरा नजरिया, वो कथात्मक वाला?
वो लहरों को एक बहुत बड़े कैनवस पर देखता है। उसके हिसाब से लहरें सिर्फ पानी का हिलना डुलना नहीं है, वो हमारे ग्रह पर ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक मुख्य तरीका है।
ऊर्जा को ले जाने का तरीका? कैसे?
सोचिए, हवा चलती है, उसकी ऊर्जा पानी में जाती है, फिर लहरें उस ऊर्जा को हजारों मील दूर तक ले जा सकती हैं।
सच में? हजारों मील?
जी हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया ने पृथ्वी के तटों को आकार दिया है, समुद्री जीवन को प्रभावित किया है, और यहाँ तक कि मानव सभ्यताओं के फैलाव और व्यापार को भी दिशा दी है।
अरे वाह, मतलब ये नजरिया लहरों को मौसम, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, इन सब को जोड़ने वाली कड़ी की तरह देखता है। कितना दिलचस्प है।
बिल्कुल। तो अगर हम दोनों के केंद्रीय तर्क को साथ रखें, इंजीनियरिंग के लिहाज से लहरों को समझना जरूरी है सुरक्षित और टिकाऊ निर्माण के लिए, और समग्र नजरिए से लहरों को समझना पृथ्वी की पूरी प्रणाली और जीवन की कहानी समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
और दोनों मिलकर एक पूरी तस्वीर देते हैं। ठीक है, ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब थोड़ा और गहराई में चलें, कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट्स को समझें।
हाँ हाँ जरूर। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ये लहर है क्या चीज?
हाँ, ये अच्छा सवाल है।
जैसा दोनों स्रोत बताते हैं, और ये बात शायद सबसे जरूरी है, लहरें ऊर्जा का आगे बढ़ना है, पानी का नहीं।
ऊर्जा का आगे बढ़ना, पानी का नहीं, ये थोड़ा समझाएंगे?
हाँ, राइकलेन कहते हैं लहरें समुद्र की सतह पर ऊर्जा के संदेश वाहक है, या कह सकते हैं लहर पानी नहीं है जो समुद्र में घूम रहा है, बल्कि ऊर्जा की एक नब्ज है जो इसके माध्यम से गुजर रही है।
अच्छा, तो मतलब पानी के कण वहीं रहते हैं?
लगभग वहीं रहते हैं। सोचिए, पानी में कोई पत्ता या गेंद तैर रही हो, लहर आने पर वो ऊपर नीचे होगी, थोड़ा आगे पीछे भी, पर लहर के साथ बहकर दूर नहीं चली जाएगी, है ना?
हाँ, सही बात है।
पानी के कण भी लगभग ऐसे ही अपनी जगह पर गोल गोल घूमते हैं एक तरह से, जबकि लहर की ऊर्जा आगे बढ़ती है।
ओके, ये वृत्ताकार गति। और ये ऊर्जा आती कहाँ से? हवा से?
ज्यादातर मामलों में हवा से ही। जब हवा पानी की सतह पर रगड़ खाती है तो ऊर्जा पानी में ट्रांसफर होती है। पहले छोटी छोटी लहरें बनती हैं, रिपल्स, फिर हवा जितनी ज्यादा देर, जितनी तेज और जितने बड़े इलाके पर चले, उतनी ही बड़ी और शक्तिशाली लहरें बन जाती हैं।
अच्छा, तो मतलब तूफान कहीं और आया, लेकिन उसकी भेजी हुई ऊर्जा हजारों मील दूर शांत लहरों के रूप में पहुंच सकती है। ये तो कमाल
है ना, जैसे प्रकृति ऊर्जा को पैक करके भेज रही हो।
हाँ, क्या सभी लहरें एक जैसी होती हैं या इनके भी प्रकार होते हैं?
नहीं, कई तरह की होती हैं। एक है स्वेल, या खुले समुद्र की तरंग। ये वो लंबी लयबद्ध लहरें हैं जो अक्सर शांत मौसम में तट पर आती दिखती हैं।
हाँ, देखिए।
ये हजारों मील दूर किसी भयंकर तूफान में पैदा होती हैं, लेकिन सफर में क्या होता है, अलग अलग गति वाली लहरें अलग हो जाती हैं। इसे डिस्पर्शन कहते हैं।
डिस्पर्जन मतलब?
मतलब तेज चलने वाली लंबी वेवलेंथ वाली लहरें आगे निकल जाती हैं, धीमी छोटी लहरें पीछे रह जाती हैं। तो जब तक ये तट तक पहुंचती हैं, ये काफी व्यवस्थित एक जैसी दिखने लगती हैं। ये प्रकृति का ऊर्जा को छाटने का तरीका है, कह सकते हैं।
वाह। और फिर हैं सुनामी। इनके बारे में जानना तो बहुत जरूरी है। लोग अक्सर इन्हें टाइडल वेव समझ लेते हैं।
हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुनामी का ज्वार भाटे यानी टाइड से कोई लेना देना नहीं, इसलिए टाइडल वेव कहना बिल्कुल गलत है।
तो ये बनती कैसे है?
ये पानी के नीचे होने वाली बड़ी भूवैज्ञानिक घटनाओं से बनती है, जैसे भूकंप, या पानी के नीचे भूस्खलन, या ज्वालामुखी विस्फोट।
अच्छा।
इनकी खासियत है इनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, बहुत लंबी होती है, सैकड़ों किलोमीटर। गहरे समुद्र में ये बहुत तेज चलती हैं, जेट प्लेन जितनी तेज, पर ऊंची नहीं होती, शायद 1 मीटर या कम।
तो बीच समुद्र में पता भी नहीं चलता होगा?
बिल्कुल नहीं, जहाजों को महसूस भी नहीं होता,
लेकिन
लेकिन किनारे पर पहुंचते ही ये खतरनाक हो जाती हैं। हाँ, जैसे ही पानी उथला होता है, इनकी गति कम होती है, पर इनकी सारी ऊर्जा कम पानी में सिमट जाती है। नतीजा, इनकी ऊंचाई अचानक बहुत बढ़ जाती है, 10 मीटर तक, पानी की एक दीवार की तरह तट से टकराती है।
भयानक। 2004 का हिंद महासागर सुनामी याद आता है।
हाँ, वो एक भयानक उदाहरण था, उसने दिखाया कि ये कितनी तबाही ला सकती हैं।
और वो दुष्ट लहरें, रोग वेव्स, नाविकों की कहानियों वाली, क्या वो सच होती हैं?
पहले वैज्ञानिक भी उन्हें कहानियां ही मानते थे, गणित के हिसाब से असंभव लगता था, पर अब ये साबित हो चुका है कि ये सचमुच होती हैं।
सच में? कैसे?
ये आसपास की सामान्य लहरों से कम दोगुनी ऊंची होती हैं, अचानक प्रकट होती हैं, भीमकाय, इन्हें फ्रीक वेव्स भी कहते हैं। 1995 में उत्तरी सागर में एक ऑयल प्लेटफॉर्म पर ड्रॉपनर वेव नाम की एक लहर टकराई और उसे मापा गया।
कितनी ऊंची थी वो?
करीब 26 मीटर, मतलब
85 फीट।
हाँ
बाप रे, 85 फीट।
हाँ,
वो एक निर्णायक सबूत था। ये क्यों बनती हैं, इस पर अभी भी शोध चल रहा है। शायद कई लहरों के मिलने से या ऊर्जा के केंद्रित होने से।
समंदर वाकई हैरान कर देता है। तो स्वेल, सुनामी, रोग वेव्स, और भी कोई खास तरह की लहरें हैं?
हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे ज्वारीय बोर, टाइडल बोर्स। ये नदियों में बनती हैं। जब ऊंचा ज्वार नदी के मुहाने से अंदर घुसता है ना तेजी से, तो पाली के बहाव के खिलाफ एक लहर बनती है। कहीं कहीं तो लोग इन पर सर्फिंग भी करते हैं।
नदियों में सर्फिंग, कमाल है। और एक होती हैं आंतरिक तरंगे, ये सतह पर नहीं दिखती, पानी के अंदर बनती हैं, जहां अलग अलग घनत्व वाली पानी की परतें मिलती हैं। पनडुब्बियों के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकती है।
अच्छा, तो हमने देखा लहरें कैसे बनती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, पर असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब ये किनारे से टकराती हैं,
है ना? बिल्कुल, तट के पास का इलाका इनके लिए एक ट्रांजिशन जोन है। जैसे ही पानी उथला होता है, गहराई कम होती है, लहरें नीचे जमीन को महसूस करने लगती हैं।
महसूस करने लगती हैं।
मतलब?
मतलब उनके नीचे जो पानी के कण घूम रहे थे, उनकी गति धीमी हो जाती है जमीन के कारण, पर ऊपर वाले कण अभी भी तेज चल रहे होते हैं। नतीजा
है,
लहर की ओवरऑल गति कम हो जाती है, वेवलेंथ छोटी हो जाती है, लेकिन ऊर्जा तो उतनी है, तो वो कहीं तो जाएगी।
तो ऊंचाई बढ़ जाती है।
एग्जैक्टली, ऊंचाई बढ़ जाती है, इसी को शोलिंग कहते हैं।
तो जैसे जैसे लहर किनारे आती है, वो सिमटती जाती है, ऊंची होती जाती है, और फिर एक सीमा आती है जब वो इतनी ऊंची और ढलान वाली हो जाती है कि अस्थिर होके टूट जाती है, वेव ब्रेकिंग।
टूट जाती है, और ये टूटना भी अलग अलग तरह का होता है।
हाँ, अगर ढलान धीमा है तो लहर धीरे धीरे झाग बनाती हुई टूटती है, स्पिलिंग ब्रेकर।
स्पिलिंग ब्रेकर।
हाँ, अगर ढलान तेज है तो लहर एकदम से पलट जाती है, एक ट्यूब सी बनाती है, प्लंजिंग ब्रेकर।
प्लंजिंग ब्रेकर,
सर्फिंग के लिए बेस्ट होती है।
हाँ, वो ट्यूब वाली लहरें देखी है फिल्मों में।
और अगर ढलान बहुत ही खड़ी है तो लहर शायद पूरी तरह टूटे बिना ही सीधे तट से टकरा जाती है, सर्जिंग ब्रेकर।
और यही टूटना है जो तटों को आकार देता है, बनाता भी है, बिगाड़ता भी।
बिल्कुल, दोनों काम करता है। लहरों की जबरदस्त ऊर्जा चट्टानों को तोड़ सकती है, घिस सकती है, गुफाएं बना सकती है। ये हुआ कटाव, इरोजन। लेकिन यही लहरें अपने साथ लाई रेत, बजरी को किनारों पर जमा भी करती हैं, जिससे सुंदर बीच, रेत के टीले, स्पिट्स, बैरियर द्वीप बनते हैं। ये हुआ निक्षेपण, डेपोजिशन।
तट एक तरह से हमेशा बदलते रहते हैं।
हाँ, जैसा एक स्रोत में कहा गया है, तट एक सीमा नहीं बल्कि एक बातचीत है। लहरें इसकी अथक लेखक हैं। तट कभी स्थिर नहीं होते, वो लहरों के साथ इस लगातार चलने वाले रचनात्मक और विनाशकारी नृत्य में शामिल रहते हैं।
और जाहिर है समुद्री जीवन पे भी इसका असर होता होगा।
निश्चित रूप से, जब लहरें टूटती हैं तो पानी में हवा मिलती है, ऑक्सीजन घुलती है, जो जीवों के लिए जरूरी है। और वो इंटरटाइडल जोन, ज्वार के चढ़ने उतरने वाला इलाका, वहां के जीवों को तो लहरों के थपेड़ों और बदलते माहौल में जीने के लिए खास तौर से ढलना पड़ता है।
अब आते हैं इंसानों पर। हमने लहरों की इस ताकत के साथ कैसे तालमेल बिठाया है, या कहें काबू करने की कोशिश की है?
कोशिश तो की है, तटीय इंजीनियरिंग इसी का नतीजा है। हम बंदरगाहों को शांत रखने के लिए ब्रेक वाटर बनाते हैं, पानी में दीवारें।
हाँ, देखें,
तटों को कटाव से बचाने के लिए सी वॉल बनाते हैं। नदियों के मुहाने या बंदरगाह के रास्ते को रेत से भरने से रोकने के लिए जेटी बनाते हैं।
पर क्या ये हमेशा काम करते हैं, या इनके कुछ अनचाहे नतीजे भी होते हैं?
यहीं पर राइकलिन का इंजीनियरिंग वाला नजरिया काम आता है। ये स्ट्रक्चर लहरों के प्राकृतिक बहाव को बदल देते हैं। हो सकता है आप एक जगह कटाव रोक लें, पर उसके असर से थोड़ी दूर आगे कटाव बढ़ जाए।
अच्छा, ऐसा भी होता है?
हाँ, क्योंकि लहरें अपनी ऊर्जा कहीं और निकालने लग जाती हैं। ये दिखाता है कि लहरों की शक्ति से खेलना कितना जटिल है। गहरी समझ चाहिए इसके लिए। प्रकृति के सिस्टम अक्सर हमारी सोच से ज्यादा पेचीदा होते हैं।
सही कहा, और इंजीनियरिंग से हटकर देखें तो इतिहास और संस्कृति में लहरों का क्या स्थान रहा है?
लहरें हमेशा से इंसानी कल्पना को लुभाती आई हैं। समुद्र के देवता, जल परियां, समुद्री राक्षस, कितनी कहानियां हैं।
हाँ वो तो हैं।
पर एक चीज जो वाकई हैरान करती है वो है प्राचीन पॉलिनेशन नाविकों का ज्ञान।
पॉलिनेशन नाविक वो कैसे?
से विशाल सागर में हजारों मील का सफर तय कर लेते थे, छोटे छोटे द्वीप ढूंढ लेते थे।
सच में सिर्फ लहरों से? ये तो अविश्वसनीय
है ना। प्रकृति को पढ़ने की अद्भुत क्षमता, ये दिखाता है कि लहरों को समझना सिर्फ विज्ञान नहीं, जीने का एक जरिया भी रहा है।
और आजकल तो हम लहरों का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए भी करते हैं। सर्फिंग, वो असल में लहर की ऊर्जा पर सवारी करना ही तो है।
बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को देखें तो कुछ मुख्य विषय या संदेश उभर कर आते हैं, है ना?
हाँ, पहला तो शायद यही है कि भौतिकी और इंजीनियरिंग का कितना गहरा रिश्ता है। लहरों जैसे प्राकृतिक बल के साथ काम करना है तो सिर्फ जुगाड़ नहीं चलेगा, उसके पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है।
बिल्कुल। और दूसरा है अनुमानों का पदानुक्रम और पैमाने का प्रभाव। मतलब लहरों का व्यवहार इतना जटिल है कि हम उसे 100% गणित में नहीं बांध सकते।
तो फिर इंजीनियर क्या करते हैं?
वो सरल मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिनियर वेव थ्योरी, जो कई स्थितियों में काम आ जाते हैं, पर उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि कब ये मॉडल काफी नहीं है और ज्यादा जटिल मॉडल या लैब में टेस्टिंग की जरूरत है। छोटी लहरें हमेशा बड़ी लहरों जैसा व्यवहार नहीं करती।
ओके। और ऊर्जा संरक्षण, वो भी एक थीम है।
हाँ, ऊर्जा संरक्षण और उसका क्षय, लहरें ऊर्जा को कैसे लाती हैं और फिर तट पर टूटकर उसे कैसे बिखेरती हैं, ये सब ऊर्जा के नियमों से बंधा है।
और वो अंतर संबंध वाली बात भी बहुत अहम लगी।
हाँ, इंटरकनेक्टेडनेस। जैसा कथात्मक नजरिया दिखाता है, लहरें अकेली नहीं है, वो हवा, मौसम, समुद्र तल, समुद्री जीवन, इंसानी गतिविधियों सबसे जुड़ी हैं। एक लहर की कहानी में पूरे ग्रह की कहानी झलकती है।
और आखिर में वो रचना और विनाश की दोहरी शक्ति, वही लहरें जो तट बनाती हैं, जीवन देती हैं, वही सुनामी बनकर या तूफान में भयानक तबाही भी ला सकती हैं।
बिल्कुल, प्रकृति की शक्ति का वो दोहरा चेहरा।
राइटलिन के लिखने का अंदाज भी दमदार है, कुछ बातें दिमाग में बैठ जाती हैं।
हाँ, जैसे ऊर्जा पर वो वाक्य, लहरें समुद्र की सतह पर ऊर्जा के संदेश वाहक हैं, या वो दूसरा वाला, लहर पानी नहीं है बल्कि ऊर्जा की एक नब्ज है, कितना सटीक है।
हाँ, और इंजीनियरिंग के नजरिए से वो पंक्ति, रेखीय तरंग सिद्धांत की सुंदरता उसकी पूर्ण सटीकता में नहीं बल्कि उसकी उल्लेखनीय उपयोगिता में निहित है। ये दिखाता है कि कभी कभी काफी अच्छा मॉडल भी बहुत काम का होता है।
सही। और तट के बारे में वो बात, तट एक सीमा नहीं बल्कि एक बातचीत है, लहरें इसकी अथक लेखक है, ये तटों की उस बदलती प्रकृति को कितनी खूबसूरती से बताता है।
बिल्कुल। और एक और बात जो सोचने पर मजबूर करती है, अनियमित लहरें गणितीय असुविधाएं नहीं हैं, वे वह वास्तविकता है जिसका इंजीनियरिंग को समाधान करना चाहिए।
हाँ, ये याद दिलाता है कि प्रकृति हमेशा हमारे आसान मॉडलों में फिट नहीं होती, हमें उसकी जटिलता का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है।
तो ये सब ज्ञान और विचार, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है?
कई तरीकों से। सबसे सीधा तो है तटीय सुरक्षा। अगर कोई समुद्र किनारे रहता है या घूमने जाता है तो रिप करेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
हाँ, वो खतरनाक धाराएं।
जी, या सुनामी के चेतावनी संकेत पहचानना, जैसे समुद्र का अचानक पीछे हटना, ये जानकारी जान बचा सकती है।
और इंजीनियरिंग और प्लानिंग में तो इसका सीधा उपयोग है ही। बंदरगाह, तटीय सड़कें, बढ़ते समुद्र स्तर की तैयारी, इन सब में लहरों की समझ जरूरी है।
पर्यावरण प्रबंधन में भी, बीच नरिशमेंट यानी तटों पर रेत डालना, कटाव रोकने के उपाय, जलवायु परिवर्तन का असर, इन सब सवालों के जवाब लहरों के विज्ञान में छिपे हैं।
और शायद सबसे सरल स्तर पर, ये हमारी प्रकृति की सराहना को गहरा कर सकता है ना?
इस तट को कैसे बनाया होगा, ये छोटी छोटी बातें अनुभव को कितना रिच बना सकती हैं।
सही कहा। तो अगर इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि लहरें जो इतनी सरल दिखती हैं, असल में कितनी जटिल, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं।
हाँ, और उन्हें समझने के लिए इंजीनियरिंग की सटीकता भी चाहिए और प्रकृति के प्रति सम्मान भी।
और मेरे लिए ये बात बहुत अहम रही कि ये लहरें कैसे हमारे ग्रह की अलग अलग प्रणालियों को जोड़ती हैं। हवा, पानी, जमीन, जीवन, ये वाकई पृथ्वी की धड़कन जैसी हैं।
राइटलिन का काम दिखाता है कि वैज्ञानिक कठोरता और व्यवहारिक समझ साथ साथ चल सकती है।
एक और बात जो मेरे मन में रह गई वो है जटिलता को स्वीकारना, चाहे इंजीनियरिंग हो या जीवन। चीजें हमेशा सीधी नहीं होती। लहरें हमें स्केल, टाइम और एनर्जी के बारे में सिखाती हैं।
हाँ,
हमें उनके साथ काम करना सीखना होगा, ना कि हमेशा उन्हें काबू करने की कोशिश करनी होगी।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं, अगली बार जब आप लहरों को देखें, चाहे समुद्र की हो, झील की, या बस चाय के कप में हल्की सी कंपन, जरा रुककर उस ऊर्जा के बारे में सोचें जो उनमें बह रही है।
सोचें कि ये सरल सी दिखने वाली चीज कैसे पहाड़ों को रेत बना सकती है, कैसे जीवन को संभव बनाती है, और कैसे इसने सदियों से इंसानों को प्रेरित और भयभीत किया है।
क्या लहरों के बारे में कोई ऐसा पहलू है जिसे जानने की उत्सुकता अब आप में और बढ़ गई है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।